हमारे वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में है प्रोफेसर पीके दशोरा जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा। आप मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी किरण दीदी जी, आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं हमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैज और बुके के द्वारा हमारे आज के वक्ताओं का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सुंदर शाम के सत्र में आप सभी का भी, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे सभी टीचर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब लोग वो स्पेशल, वो एलाइटेड आत्माएं हैं जिन्होंने कम से कम इस विषय की महत्व को आपने समझा कि वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमें उसको अटेंड करना चाहिए। आप सबके मन में जरूर कोई श्रेष्ठ संकल्प रहा होगा कि क्या है ये कॉन्फ्रेंस, किस तरह से हम वैल्यूज के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से हम अपने इंस्टीट्यूट्स में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं। और आप सबने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पहुंचे हैं, तो आप सब बहुत बहुत ये कहेंगे कि महान और उच्च सोच रखने वाले श्रेष्ठ हमारे देश के शिक्षक गण हैं, शिक्षाविद हैं। आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज के विषय में लीडिंग थ्रू बीइंग। इसमें एक वर्ड है बहुत खूबसूरत, बीइंग। इस बीइंग का क्या अर्थ है? बीइंग माना हम एक शब्द यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन शब्द बना है ह्यूमस वर्ड से, ह्यूमस माना मिट्टी और बीइंग माना चैतन्य शक्ति। तो ह्यूमन बीइंग माना ये शरीर मिट्टी से बना, पांच तत्वों से बना हुआ पुतला है और इसके अंदर बीइंग जो है, ज्योति जो है, वो है आत्मा। अगर हम इसी दृष्टिकोण से हमारे सारे कार्य व्यवहार करते हैं कि हम एक आत्मा है और जिससे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो भी एक आत्मा है, तो ये बहुत सुंदर रीति से हम अपने सारे कार्य को, कारोबार को कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हमें और अधिक गहराई पर ले जाने के लिए हमारे बीच में है हमारी आदरणीय किरण दीदी जी। आप पिछले 23 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित रूप से इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मैथ्स से मास्टर्स आपने किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं नागपुर यूनिवर्सिटी से, और आपका जो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल में है उसमें वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को एक कंपलसरी कोर्स के रूप में शुरू करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप ब्रह्मा कुमारी के एजुकेशन विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और आप भोपाल में कोलार नाम के जगह पर ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र है, आप उस सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं। साथ साथ जैसा दीदी के हम फेस पर देख सकते हैं, बहुत निर्माणता, बहुत शांति हमें उनसे बैठने से, सामने बैठने से मिल रही है, तो उनका व्यक्तित्व तो भी ऐसा ही है। दीदी जी आपसे अनुरोध है, इस विषय की गहराई पर हमें लेकर चलेंगे।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। मंच पर आसीन हमारे अतिथि और सदन में उपस्थित आप सभी मीठे भाई बहने, लीडर के साथ जब भी कोई बात शुरू होती है तो लीडरशिप क्वालिटीज हम देखना चाहते हैं लीडर में, और अपनी अपनी तरह से हर स्कूल कॉलेज में हम बच्चों में डिफरेंट क्वालिटीज लाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज रखते हैं, कहीं मॉक पार्लियामेंट होती है, और भी विभिन्न तरह की एक्टिविटीज रखी जाती है। कुल मिलाकर शिक्षा में, शिक्षा जगत की ये एक अहम भूमिका है कि वह अपने देश के लिए, इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए हर फील्ड में अच्छे लीडर्स भी तैयार कर पाए। लीडर की जब बात आती है तो लीड शब्द हमें कहीं न कहीं ऐसी क्वालिटीज की तरफ इशारा करता है जिसमें उस व्यक्ति को सब स्वीकार करें। देर आर टू कंसेप्ट नाउडेज, आइदर वी कैन बी गेनिंग फेम और लीड द पीपल बाय डूइंग। वन इज बाय डूइंग एंड द अदर इज बाय बीइंग। लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है कि ये जो करने वाली है, करता है, वो कौन है? इफ सपोज, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं, है ना, तरह तरह की स्किल्स हमने सीखी हैं, और जिस ग्रुप में या जिस प्रोजेक्ट के साथ हम असाइंड हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में या सिंपल अपने घर में भी, कोई ना कोई तो एक मुखिया होता ही है। तो लीडर या बड़ा हमारे चाहने से हम बन सकते हैं? अगर मैं चाहूं कि मैं लीडर बन जाऊं तो हम बन सकते हैं? बड़ा बनने के लिए बड़प्पन तो चाहिए ना। जब हम एक्सट्रोवर्ट होकर बाहरी एक्टिविटीज के आधार पर, बाहरी अचीवमेंट्स के आधार पर लोगों को लीड करना चाहते हैं तो वो लीडरशिप कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। इट्स काइंड ऑफ कि अगर मेरे पास डिग्रीज है, पद है, पोजीशन है, तो तब तक लोग मुझे मानते रहेंगे, लेकिन उस पद पर रहकर लोग मुझे स्वेच्छा से लीडर माने, इसके लिए मुझे थोड़ा सेल्फ पर कहीं ना कहीं अटेंशन देने की जरूरत है। जब हम सेल्फ या बीइंगनेस पर ध्यान कम देते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एंटी वैल्यूज जन्म लेने लगती हैं, जैसे पजेशन। मैं पजेसिव हो जाती हूँ, मुझे लगता है जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो सबको मानना चाहिए। वहां मैं दूसरों की डिग्निटी की वैल्यू नहीं रख पाती। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय मैं जिस चश्मे से दुनिया को देख रही हूँ वो या तो मैं उम्र में बड़ी हूँ इसलिए लोग मुझे माने, या मेरे पास एक्सपीरियंस इस काम का ज्यादा है इसलिए लोग माने, या फिर मेरे पास डिग्रीज पोस्ट है इसलिए लोग माने। लेकिन इन सब के पीछे कर्ता कौन है वो भूल जाने से कमाल के बजाय धमाल हो जाती है। जैसे गांधी जी ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लड़ा इलेक्शन, लेकिन लोग फिर भी मानते हैं, चाहते हैं और आज तक भी चाहते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस बीइंग की हम बात करने जा रहे हैं वो बीइंग और कुछ नहीं, एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर विद्यमान है और जिसके लिए हम 3 दिनों से यहाँ सेशंस ले रहे हैं एवरी मॉर्निंग कॉन्शियसनेस की सारी बात है। मेरी कॉन्शियसनेस में अगर ये है कि मैं ऑफिसर हूं तो मैं बहुत ऑफिशियल रहूंगी हर समय पर। मेरी कॉन्शियसनेस में अगर ये है कि मैं टीचर हूं तो मुझे कौन याद आता है? स्टूडेंट याद आता है। मेरी कॉन्शियसनेस में अगर ये है कि मैं फादर हूं मदर हूं तो मुझे कौन याद आता है? बच्चे याद आते। और जैसे जैसे मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती जाती है मेरा व्यवहार भी चेंज होता जाता है। इजंट इट सो? ऐसा होता है, है ना? हम घर आते हैं बच्चे के साथ, जब पेरेंट बन के डील करते हैं उस वक्त की हमारी डीलिंग, अगर मैं ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में अपने आप को लीडर ऑफिसर समझती हूं उस वक्त की मेरी डीलिंग फर्क होता है। अब जो सामने है जिसको मैं डील करना चाह रही हूं उसके अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी है और ये इंडिविजुअलिटी कॉन्शियसनेस में है जिसको हम बीइंग कहते हैं। और बीइंग पर अटेंशन ना होने से, एक्सट्रोवर्ट होने से, हम वो जो फाइन लाइन है वैल्यूज और एंटी वैल्यूज के बीच, उस फाइन लाइन को भूल जाते हैं। ये बीइंगनेस वैल्यूज की बनी हुई है। जैसे आप मेडिटेशन जब करते हैं और मेडिटेशन में कमेंट्री हो रही है, दो तीन दिनों से आप सुन रहे हैं, है ना, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। सितारा तो हूं लेकिन वो सितारा और इस सितारे में, जमी के सितारे में और आसमान के सितारे में क्या फर्क है? उसमें वो बीइंगनेस या वो चैतन्यता नहीं है और हमारे अंदर वो चैतन्यता है। और वो चैतन्यता क्यों है? क्योंकि ये ऊर्जा पॉजिटिव वैल्यूज की बनी हुई है, ठीक है ना? तो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी मेरी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। या हम ये कहें कि हम, मैं, जब हम मैं कहते हैं तो उस कॉन्शियसनेस की बात है। मैं आत्मा कौन सी ऊर्जा की बनी हुई हूं? पॉजिटिव ऊर्जा की बनी हुई हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मैं, उस मैं को भुलाया, एक नई आइडेंटिटी का लबादा हमने ओढ़ लिया। और जो नई आइडेंटिटी मैंने बनाई वो मेरे किसी न किसी रोल के आधार पर होती है। अब जैसा जैसा रोल होगा वैसा वैसा मेरा बिहेवियर फ्लक्चुएट करेगा। दिस इज वाई कि हमारे बहुत सारी फ्लक्चुएटिंग मूड्स में रहने की हैबिट है। आपने कभी देखा होगा जो डीटीज दिखाए जाते हैं, एंजल्स दिखाए जाते हैं, उनके फेसेस पर बहुत सारे भाव होते हैं। कोई देवी देवताओं की सभा भी कोई फोटो में दिखाई जाती है, उन सबके चेहरे पर अलग अलग मूड, कभी तिरछी निगाहें, कभी एंगर वाला मूड, या कभी डाउटफुल है अंदर से ऐसा मूड। नहीं, वो 36 प्रकार के भोजन खाते हैं और हम 36 मूड चेंज करते हैं। तो इन सब में होता क्या है? सामने वाला हमारे मूड के आधार से अपने आप को सेट करने में डिफिकल्टी फील करेगा, नंबर वन। दूसरा, जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं हूं तो मेरी पावर्स एक्टिवेटेड नहीं है। एक लीडर के लिए डिस्क्रिमिनेशन पावर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जैसा समय चल रहा है, लीडर को भ्रमित करने के लिए उसके इर्द गिर्द बहुत सारे तरह तरह के मेंटालिटी वाले लोग होते हैं जो उसको वो दिखाना चाहते हैं जिसमें उनका स्वार्थ पूरा होता हो। नाउ लीडर हैज टू फाइंड, डिफाइन द थिंग्स, सिचुएशंस, एनालाइज एंड देन टेक जजमेंट्स। जब लीडर बीइंगनेस के कॉन्शियसनेस में होता है, ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, क्योंकि सोल के पास वो एबिलिटी है, सोल कैन सी बियॉन्ड द सीन। मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी है, मेरी जजमेंट पावर अच्छी है, तो मेरा मॉरल करेज अपने हाईएस्ट पीक पर रहता है। जिस समय हम बीइंगनेस की कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, उस समय हमारा मॉरल करेज भी डाउन रहता है। आपने पुरानी फिल्में देखी होगी या अभी भी देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार दिखाते हैं एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है या कोई एक बहुत अच्छा ऑफिसर है, वो गलत कामों में करप्शन में कभी साथ नहीं देता, है ना। तो जो कोई भी वहां का वो होता है बॉस डॉन जो कोई भी, वो उनको फिर कैसे डील करता है, उससे कनेक्टेड रिलेटिव्स जो हैं उनको टॉर्चर करके वो इसको ग्रिप में लेता है। ऐसा क्यों हो जाता है? वहां लिमिटेशन आ गई लीडर, क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं यहां इनकी कमजोर रग है। एक व्यक्ति जो बीइंगनेस में रहता है उसकी कोई कमजोर रग नहीं होती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या गांधी जी के साथ कस्तूरबा नहीं थी? क्या मोहनदास करमचंद गांधी की फैमिली नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर इतने सारे ब्रिटिशर्स के सामने वो खड़े हो गए। उन्हें पता था कि डूइंग वाली पावर तो है ही नहीं हमारे पास। अंग्रेजों की जो हार्ड पावर थी, वो हार्ड पावर की कंपैरिजन में हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर उनके पास ऐसी कौन सी पावर्स थी, है ना। आपने देखा होगा गांधी जी की जब भी कोई कथा दिखा, वो स्टोरी फिल्म दिखाते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले वो जल्दी 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 जाके साबरमती के किनारे खड़े होते थे या सी बीच के पास, वहां खड़े होकर फिर उन्होंने कुछ चिंतन किया, फिर कुछ सोचा, फिर तुरंत आते थे वापस आश्रम पर आए, फिर उन्होंने बात रखी अपने सहयोगियों के बीच, मूवमेंट स्टार्ट। ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जिसने ड्रेस चेंज कर लिया। ओनली चेंजिंग द ड्रेस इज़न्ट स्पिरिचुअलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बीइंगनेस, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। इट्स नॉट एज इफ कि मैं ये हूं और मेरे अंदर एक बीइंगनेस या एक आत्मा चली गई है। इट्स जस्ट द अपोजिट। आई एम द कॉन्शियसनेस, आई द सोल, मैं वो बीइंगनेस हूं और हमने ये ह्यूमन ड्रेस पहना है। जैसे वार्डरोब से कपड़े आप निकाल के पहनते हैं, कपड़े आपको नहीं पहनते। अगर मैं जैसे कपड़े पहनूं वैसा ही बिहेव करने लगूं तो मेरा जीवन शायद नौटंकी बन के रह जाएगा। होगा ना ऐसे होगा। और मुझे अपनी एक्शंस को डिफाइन करना भी नहीं आएगा। जब मैं अपनी पहचान ही भूल जाऊं तो एक अस्तित्वहीन जीवन, और उस अस्तित्वहीन जीवन का हर कर्म गलत, चाहे मैं सही भी कर रही हूं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो लोग हैं, मोहन और श्याम। मान लिया कि मोहन और श्याम दोस्त बन गए। मोहन एक अच्छे घर का वेल टू डू फैमिली का लड़का है और श्याम एक फ्रूट सेलर है, बड़ी मुश्किल से कमाता खाता है, जो कुछ भी करता है। अब कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, और मान लो मोहन अपने आप को श्याम समझने लगा, उसकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा? हाउ विल मोहन बिहेव? ही विल बिहेव एज इफ ही इज श्याम। अब मोहन एक अच्छी फैमिली का लड़का है, उसके पास बिजनेस है, उसके फादर की वो हेल्प करता था, लेकिन क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस में चेंज आ गया तो अब वो अपनी समझ से बहुत अच्छे काम करेगा। सबसे अच्छा काम वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी सवेरे उठ के अपने फ्रूट्स की शॉप वो जो कुछ है फ्रूट्स ठीक कर लेगा सब कुछ. अब वो बहुत अच्छा कर रहा है, श्याम के घर में रह रहा है, श्याम के पेरेंट्स की देखभाल कर रहा है, उस फैमिली के प्रति जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर ही उसका सारा फोकस है, तो देखने वाला कोई कहेगा कि ये गलत है लड़का? हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एज ए थर्ड पार्टी देख रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? इज इट राइट? तो जैसे ही कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है वैसे ही हमारे हर एक्शन रॉन्ग हो जाते हैं, भले हम उसको कितना भी सही समझ कर कर रहे हैं. और रॉन्ग एक्शंस परफॉर्म करने वाला क्या कभी लीडर हो सकता है? लीडर इज द वन हु कैन गिव द पीपल अ न्यू पाथ. लीडर वो जो अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा दे. लीडर वो जो रास्ता एक ऐसा नया बना दे, चल के दिखा दे और लोगों को समझ में आ जाए कि ये भी एक रास्ता है, वो लीडर. जब कभी लीडरशिप की बात आती है तो साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें है, प्रशासन भी उसमें समाया हुआ होता है. प्रशासन के लिए शासन शब्द है, लेकिन ये जो प्र है ना, पर के ऊपर शासन, ये करने के पहले स्व पर शासन. स्व पर शासन मैं तब कर सकती व्हेन आई एम अटेंटिव अबाउट मायसेल्फ. आई डू एक्सेप्ट व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन मी एंड आई वर्क ऑन मायसेल्फ. अपने सेल्फ पर अगर मैं वर्क नहीं करती और मैं लीडर बनने की कोशिश करती हूं तो सबकी आंखों की किरकिरी बन जाती. फिर लोग तब तक ही मुझे सम्मान दे सकते हैं जब तक मेरे पास कोई बाहरी पावर है, पद पोजीशन, पैसा, जो कुछ भी. लेकिन दिल का जो रिगार्ड रेस्पेक्ट है वो नहीं मिल सकता. तो जो आउटवर्ड वर्ल्ड से आ रहा है वो सब टेम्पररी ही रहेगा ना, क्योंकि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है. एवरीथिंग इज चेंजेबल. मेरी बॉडी चेंजेबल है, यहां के रिश्ते बदल जाते हैं, हमारा मन बदल जाता है. मैं खुद नहीं जानती कि अगले पल मेरे दिमाग में क्या चलेगा. लेकिन इन सब चीजों पर निगाह हम रख सकते हैं जब हम इन सब से थोड़ा ऊपर उठे. जैसे आपके हाथ में जो डायरी है उसे अगर आप ऐसे 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 लेके पढ़ते हैं और आंखों के बहुत नजदीक ले जाते हैं, विल यू बी एबल टू रीड? नो. क्यों? क्योंकि आपको किसी भी चीज या बात या समस्या या सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा एक मिनिमम डिस्टेंस, जैसे विजन को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए राइट देखने के लिए, ऐसे ही किसी की समस्या, किसी की बात को समझने के लिए आई नीड टू मेंटेन सम डिस्टेंस. अच्छा, हम सब जानते हैं हमारे बच्चे या हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे आजकल बहुत काउंसलिंग की डिमांड करते हैं, करते हैं ना? काउंसलिंग कॉर्नर रहता है स्कूल कॉलेजेस में आजकल, स्पेशल काउंसलिंग होती है. कई बार तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए काउंसलिंग होती है. आश्चर्य इस बात का है कि जो पेरेंट्स दिन रात इतना बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, एक सिंपल बात वो पेरेंट्स से नहीं बताता, मन ही मन में रखता. टीनेजर्स दे डोंट ओपन नाउअडेज, बताना नहीं चाहते हैं घर में, काउंसलर के पास जाके खुलते हैं. क्यों? क्यों? क्योंकि उसने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया. हम क्यों रिएक्ट कर देते हैं तुरंत? क्योंकि बीइंगनेस की जो फीलिंग है वो भूले हुए हैं हम. तो उस समय मेरे दिमाग में क्या है, मैं पेरेंट, ये बच्चा मेरा बच्चा, इसको वो सुनना चाहिए, वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, और वही उसी में इसकी भलाई है, इसको समझ नहीं है. उस समय हमको ये समझ नहीं है कि वो एक अलग ऊर्जा लेकर आई हुई आत्मा अपने कर्म, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपनी पसंद, अपनी नापसंद. तो हम अटैच होके जब किसी को लीड करने का, रास्ता दिखाने का या बड़ा होने का दावा करते हैं ना, हम वहीं फेल हो जाते हैं. और काउंसलर के पास जाके वो क्यों खुलते हैं, क्योंकि काउंसलर रिएक्ट नहीं करता. अगर उसने बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे कहता हूं, मैं गाली देता हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं, तो काउंसलर बोलेगा अच्छा ठीक है बैठिए, देखते हैं क्या है. तो ये जो डिस्टेंस, कहां कितना कैसे, कहां फैसिलिटेटर होना है, कहां गाइड बनना है, कहां प्यार, कहां लॉ, लव एंड लॉ का बैलेंस, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे, प्रजापिता ब्रह्मा की स्टोरी आपने सुनी होगी शायद आपके शेड्यूल में. एडम कहा जाता है ब्रह्मा को, है ना, एडम एंड ईव. हम कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती, जैनिज्म में वो कहते हैं आदिदेव आदिदेवी. इनमें क्या ऐसी विशेषता थी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड उनके नाम से बना, उन्होंने एक इतिहास बना दिया. कोई छोटा सा विजन नहीं था उनका कि मुझे एक स्कूल खोलनी है या एक कॉलेज खोलना है, उन्होंने ये कभी नहीं किया. ना वो किसी इलेक्शन में खड़े हुए, ना उन्होंने किसी से कहा कि मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे ऐसा मान सम्मान चाहिए. जब उनके पास ये ईश्वरीय मैसेज नहीं था, उस वक्त भी वो जब प्रार्थना करते थे हर रोज ईश्वर से और जल तर्पण करते थे, तो वो शब्द ये होते थे विश्व की सभी आत्माओं की शांति और कल्याण के लिए. तो ये विजन लीडर के पास ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि उसके अंदर हर एक के लिए अपनेपन का भाव होता है. हर एक के लिए अपनापन हम फील ही नहीं कर सकते जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है. बॉडी कॉन्शियसनेस मेरी आंखों पर वो चश्मा लगा देता है जिससे मुझे सही चीज गलत और गलत चीज सही नजर आती है. जब मैं मोहन के बदले श्याम बन जाती हूं, तो अगर मुझे कोई कहेगा, मोहन के पिता कहेंगे कि तुम्हें फ्रूट्स की शॉप पर नहीं बैठना है, तुम्हें जाके अपनी एजेंसी संभालनी है, तुम मेरी स्मृति रॉन्ग है, तो मुझे वो व्यक्ति रॉन्ग नजर आएगा. मैं अपना भला बुरा भी नहीं समझ सकती. दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल. इसलिए इस विश्वविद्यालय का फर्स्ट एंड लास्ट लेसन, जिस दिन ये शिफ्टिंग हो गई ना कॉन्शियसनेस की, उस दिन हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त. उस दिन हमारे देश की कोई राजनीतिक समस्या रहेगी नहीं, सांप्रदायिक दंगे समाप्त, फैमिली ब्रेकिंग समाप्त. हर समस्या की जड़ में अगर कोई बात है तो वो यही है, क्योंकि हम में से हर एक ये पूरी जर्नी करते करते चार युगों तक की, गोल्डन एज टू आयरन एज, अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर चुके हैं. एंड दैट इज वाई जो कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट हमको जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती. इस फ्रस्ट्रेशन से फिर हम डील करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए भी कुछ बाहरी उपाय हम तलाशते हैं, है ना. हम फिर सोचते हैं म्यूजिक सुनने से अच्छा लगेगा, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं अच्छा लगेगा, वो सब ठीक है, टाइम बीइंग ठीक है, थोड़ा समय हमने बिता लिया, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गए, बट व्हाट अबाउट द होल लाइफ? हर बार मैं अपनी खुशी के लिए, शांति के लिए, सम्मान पाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करूंगी। जब दूसरे मुझे अच्छा कहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं अच्छी हूं, और दूसरे ने कह दिया मैं खराब हूं तो मैं खराब हूं, या फिर ये हो गया दूसरों के इन्फ्लुएंस में चलना, या फिर किसी दूसरे ने कह दिया तो मैं चेक नहीं कर पाती अपने आप को कि अगर कोई कह रहा है तो लेट मी फर्स्ट चेक, मैं चेक ही नहीं करती, वो फिर ईगो, आइदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है बॉडी कॉन्शियस से। जब हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो दूसरे हमें सुपीरियर नहीं समझते, वो कभी नहीं मानेंगे कि हम बड़े हैं। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी, नट शब्द हमारे शास्त्रों में दो स्थानों पर आता है, एक कृष्ण के लिए कहते हैं नटवर, और एक परमात्मा शिव की साउथ में मूर्ति बनाई जाती है नटराज के नाम से, और उसका पोज बड़ा बैलेंसिंग होता है, आपने देखा होगा नटराज जो बनाए जाते हैं एक पैर जमीन पर एक पैर जमीन के ऊपर, और चेहरे के भाव शक्ति और प्रेम दोनों से भरे हुए। नट वो होता है जो बैलेंस बना के चलता है, आपने देखा होगा रस्सी पर चलते हैं, अगर एक पांव जरा भी इधर उधर हुआ तो सफल नट नहीं कहलाएगा। तो नट हम सब इस दुनिया के नाटक में कौन है, नट ही तो हैं। हर वक्त हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिस में, घर में, भाइयों के लिए है, पत्नी में, माँ में, बैलेंस, भावना का, विवेक का बैलेंस है ना, लौकिक अलौकिक बैलेंस, जहां ही बैलेंस बिगड़ा वहां कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। तो नटराज माना हम सभी नटों को ये कला सिखाने वाले राजा प्रथम गुरु परमात्मा शिव, और ये कला योग से जीवन में संतुलन बनाना वो सिखाते। डिमोनिटाइजेशन जब हुआ, नोटबंदी जब हुई, इतना आसान काम था क्या? आसान था? जनता ने बहुत सारी मुश्किलें भी झेली, ऐसा स्टेप लेने के लिए करेज चाहिए, कौन सा करेज चाहिए? मॉरल करेज। कितने लोगों ने क्या क्या बातें नहीं कही, क्या क्या डिफिकल्टीज नहीं आई, लेकिन सारी परेशानियां झेलने के बावजूद आम जनता ने कोई विद्रोह नहीं किया, वो इस बात को सूचित करता है कि उन्होंने मोदी को एक्सेप्ट किया, उसकी बात को माना। तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर में ये पहचान, ये समझ है कि योग से बहुत परिवर्तन हो सकता है, और उन्होंने उसको जाके यूएनओ में स्थापित करवाया। तो ये जब आयुष विभाग ने 21 जून प्रथम बार जब मनाया गया तो बुकलेट्स छापी हैं, आप उस बुकलेट को खोल के देखिए, आयुष विभाग ने योग का इतिहास नाम से एक पूरा पैराग्राफ छापा है, और उसमें योग के इतिहास बताते हुए पहले ही लाइन में लिखा है, भारत में यह प्राचीन योग सिखाया गया और योग के प्रथम आदि गुरु परमात्मा शिव है। तो परमात्मा शिव आकर ये योग सिखाते हैं, क्या हमारी ऐसी उम्मीद है कि परमात्मा आके कुछ चमत्कार करेंगे? परमात्मा आकर के हमको आत्मा का संतुलन बनाए रखना सिखाते हैं इस हलचल के समय में, या मैं इसको महाभारत काल कहूं। अर्जुन को डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड से निकालते हैं और उसको बैटल फील्ड के रूप में इसलिए दिखाया गया क्योंकि बैटल फील्ड इज द प्लेस वेयर द नेगेटिविटीज आर एट द पीक हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो पॉइंट है वहां पहुंच चुकी नेगेटिविटी, ऐसे समय में मुझे अपने आप को ये बाहरी प्रेशर्स झेलने के लिए अंदर से मजबूत बनाना है ना, तब तो संतुलन बनेगा। और वो अंदर का संतुलन कैसे बनेगा, जब मैं अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान पाऊं, और आंतरिक शक्तियों को मैं तब पहचान पाऊंगी जब मैं अपनी इनर पर्सनालिटी को पहचान पाऊं। बिकॉज व्हाट आई वेयर, हाउ आई टॉक, हाउ आई वॉक, दिस इज माय आउटर पर्सनालिटी, दिस मे चेंज टुमारो, लेकिन मेरी जो पर्सनालिटी है वास्तव में वो क्या है, हाउ आई थिंक। तो अपनी बातों में, सोच में, व्यवहार में, वृत्तियों में, हर बात में संतुलन लाने के लिए मेरे थॉट्स स्ट्रीमलाइन होने चाहिए ना। और मैं जब इतनी संतुलित हूं तब तो मैं किसी ग्रुप को लीड करके अंधेरे से भी निकाल के, हर प्रकार की परिस्थितियों से निकाल के ले जा सकती हूं। हाथी जंगल में आग लगे तो सबसे पहले चिंगारता है और अपने ग्रुप को बिल्कुल बचा के ले जाता है, वो समझ बूझ होती है उसके पास। इसीलिए गणेश जी को सिर किसका दिखाया, गणेश कौन है, शिव पुत्र। आप सब कौन है, आप भी तो गणेश और सरस्वती हैं। विद्या का, बुद्धि का दान देने वाले कौन है, तो आप सब हे गणेश पुत्रों, सरस्वती पुत्रों, गणेश पुत्रियों, सरस्वती पुत्रियों, ये बैलेंस, ये हमारे पिता का मैसेज, आपसे बेहतर आज की जनरेशन तक कौन पहुंचा सकता है। तो प्लीज 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 उनको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। ब्रह्मा कुमारी से बहुत सारे आप देख रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस की कंप्लीट साइंस है। आवर चिल्ड्रन मस्ट नो, फर्स्ट वी मस्ट नो, हु एम आई, हाउ डू माई कॉन्शियसनेस वर्क, हाउ कैन आई चेंज माई माइंड, मैं अपने स्क्रीन को कैसे ठीक रखूं कि ये जो सीन चल रही है, अगर मैंने अभी आपको कहा कि अपने घर के किचन में जाइए और फ्रिज का दरवाजा खोलिए, तो मुझे आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपके फ्रिज का कलर कैसा है, उसमें एप्पल कहाँ रखे रहते हैं, आपकी सबकी मानस पटल पर आ गया ना। तो माने ये पावर है हमारे पास, यहां रहते हुए भी वी कैन सी बियॉन्ड द सीन। हमारी सारी पावर्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर, जजमेंट पावर, ये सारी तभी राइट काम कर सकती जब हम अपनी सीट पर सेट हों। मान लो हम में से कोई वाइस चांसलर है और उसको ये भूल जाए कि मैं वाइस चांसलर हूं, तो वो सीट पर सेट नहीं है तो कोई उसकी फिर बात नहीं मानता ना। ठीक ऐसे ही जब कॉन्शियसनेस अपने इस अकाल तख्त जिसको कहा, यहां उसका स्थान है, तो उस कॉन्शियसनेस में जब हम नहीं रहते, वो वहां स्थित नहीं रहती, तब लोगों को लीड करना, लोगों पर शासन करना तो दूर की बात हो गई, हम खुद ही अपना संतुलन खो बैठते हैं। फिर हम कैसे अधिकारी बन जाते हैं, स्ट्रेस में रहने वाले, तनाव में रहने वाले, गुस्सा करने वाले। फिर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सामने तो डर डर के चुप रहते हैं, बाहर निकल के मजाक बनाते हैं। तो हम में से कोई भी ऐसा लीडर तो बनना नहीं चाहेगा ना कि मेरे बच्चे बाहर निकल के मजाक बनाएं, या हम हर टाइम स्ट्रेस्ड रहें। हम बैलेंस्ड पर्सनालिटी बने, और इसीलिए श्री कृष्ण को नटवर कहा, नटों में वरिष्ठ, जिसने गोपेश्वरम में आराधना करते हुए दिखाया है ना शिव की कृष्ण को, तो उन्होंने क्या सीखा, कृष्ण ने क्या पाया शिव जी से, देवी देवताओं ने परमात्मा शिव से क्या पाया? कुछ तो पाया होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो प्राप्ति उन्होंने उनसे की। और जब कभी भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी देवी देवताओं को, किसके पास जाते थे? ब्रह्मा जी के पास जाते थे ना। ब्रह्मा जी के हाथों में सारी पुस्तकें दिखाते हैं, विद्या, सरस्वती और ब्रह्मा, बड़ा गहरा कनेक्शन है। यही सारे रोल प्ले हो रहे हैं। हम सबको अपनी इस गौरवशाली संस्कृति को और इस सत्य ज्ञान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए, क्योंकि यही एक सत्य ज्ञान है जो सारे विश्व को उभार सकता है और भारत की खोई हुई गरिमा भी लौटा सकता है, और सबसे पहले हमारी ह्यूमन डिग्निटी लौटा सकता है। ओके, तो हम सभी अपनी कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएं एक मिनट के लिए। अपने आप को एक सकारात्मक ज्योति के रूप में भृकुटी तख्त पर देखें यही सकारात्मक ज्योति बीइंगनेस है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। ये मेरा सत्य स्वरूप है। इस ज्योति की शक्तियां मुझे इस संसार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने का बल प्रदान करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए एक पारिवारिक संस्कृति में रहने के लिए सुख और शांति में जीवन बिताने के लिए साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से पूरा करने के लिए मैं अपनी इन आत्मिक शक्तियों का उपयोग करती हूँ। जैसे जैसे मेरी इस सत्य स्वरूप की शक्ति का मुझे आभास होता है, इस दुनिया की समस्याएं मेरे लिए छोटी होती जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एरोप्लेन से सफर करते वक्त मुझे धरती के बड़े पहाड़ भी छोटे लगते हैं और जमीन पर चलते वक्त मुझे छोटा पत्थर भी बाधा लगता है। हर परिस्थिति में अपने को, अपने ग्रुप को, परिवार को, इंस्टीट्यूशन को मैं ठीक तरह से निकाल कर सही रास्ते से चल पाऊं, अंधेरों में रोशनी की किरण दिखा पाऊं, इसके लिए मैं आत्मा आज से अपनी आंतरिक शक्तियों को रियलाइज करके शक्तियों और गुणों के परम स्रोत सुप्रीम पावर से अपने आप को मन और बुद्धि द्वारा जोड़कर हम शक्तिशाली बनाते चलते हैं और फिर उन शक्तियों का उपयोग करते हैं इस देश और समाज के कल्याण के लिए, स्व के और पर के कल्याण के लिए। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, बहुत सरल और बहुत सहज शब्दों में अपनी मधुर वाणी से आपने हमें इस बीइंग के गहन रहस्य को समझाया। हमने स्टोरीज बहुत सारी सुनी है महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की, या अभी हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में भी सुना था कि ये एक बहुत श्रेष्ठ लीडर रहे हैं अपने काल में। लेकिन हम सब ने कल एक साक्षात उसका साक्षात्कार अपने इन आंखों से किया था जब हमने 102 वर्षीय दादी जानकी जो इस संस्था की लीडर हैं उन्हें अपने इन आंखों से देखा। जब वो हॉल में आए थे तो मैं समझती हूँ आप सभी ने अनुभव किया होगा कि यहाँ चारों ओर एक असीम ऊर्जा का संचार हो गया था। किस किस ने ये अनुभव किया था? लगभग सभी ने किया था। वो शक्ति किसकी थी? क्या वो उस 102 वर्ष पुराने शरीर की शक्ति थी? किसकी शक्ति थी? वो शक्ति थी उस बीइंग की जिसको उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, उस स्वरूप में वो रही और उसी के आधार पर आप ये देख रहे हैं संस्था। आप पिछले दो दिनों से सोच रहे होंगे कैसे इस संस्था का मैनेजमेंट चलता है, कौन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कैसे ये सारा कारोबार चलता है। उसका आधार ये कॉन्शियसनेस कि आई एम अ बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, उसको हमने अपने इन आंखों से साक्षात देखा। देखने का हमें सौभाग्य मिला कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ही, अपनी स्मृति को इतना ऊंचा बना करके संसार में श्रेष्ठ मैसेज फैलाने के वो निमित्त बने। इसी विषय पर हमें और अपने अनुभवों के आधार से बताने के लिए हमारे बीच में है हमारे आदरणीय प्रोफेसर पीके दशोरा जी। आप के ऊपर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यभार है। आप हमारे बीच में इतना दूर से अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। हम सभी आपसे अपने आपके अनुभव से सुनना चाहेंगे कि कैसे ये लीडरशिप बैलेंस की जाए।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी की, इस सत्र की मुख्य वक्ता दीदी किरण, कार्यक्रम का संचालन करने वाली दीदी नेहा, उपस्थित सभी प्रतिभागी बंधुओं, कुलपतिगण, विद्वान जनों, माताओं बहनों, इसके पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं। थोड़ा मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए अपने दाएं बाएं जो साथी बैठे हैं उनको भी देखकर मुस्कुराइए। यह मुस्कुराहट आपको आप में एक परिवर्तन लाती है। यह परिवर्तन जब आप मुस्कुराते हैं तब अपने आप को जानते हैं और मुस्कुराते हुए अपने पास बैठे हुए किसी साथी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उसमें भी अपने आप को पाते हैं। यही बीइंग का अर्थ है मेरी दृष्टि में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने यहां बैठे हैं उस विषय पर गणित की विदुषी ने जिस सरलता से हमारे समक्ष विषय को प्रतिपादित किया मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को कोई संशय रहा है कि नेतृत्व और नेतृत्व थ्रू बीइंग, लीडरशिप थ्रू बीइंग, तो पहले पहली आवश्यकता लीडरशिप की नहीं है, पहली आवश्यकता अगर गणित की दृष्टि से भी देखते हैं तो स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की और स्वयं का साक्षात्कार करने की है। यह स्वयं क्या है? व्हाट इज दिस सेल्फ, व्हाट इज दिस जिसको हम जानना चाहते हैं, जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं। यह फिजिकल बॉडी तो नहीं है जैसा कि अभी बताया। इस फिजिकल बॉडी से अतिरिक्त क्या है? और जब इस फिजिकल बॉडी से अतिरिक्त की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक मां जो खाना बना रही है, तवे पर रोटी पड़ी हुई है और उसके कान में आवाज आती है कि कोई बच्चा गिर गया और उसको लगता है कि मेरा बच्चा गिरा है, वो तवे पर रोटी छोड़ करके भाग करके बच्चे को उठाने जाती है। जब उसे पता लगता है ये मेरा बच्चा नहीं था, यह तो पड़ोसी का बच्चा था, वो वापस आके रोटी संभालना शुरू कर देती है। यहां यह बात स्पष्ट होती है कि वह मां अपने बच्चे में तो स्वयं को देखती है, वैसा ही देखती है जैसे कि वह खुद गिर गई है अथवा उसका हाथ चूल्हे पे जल गया है और उसको बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए अथवा अपने हाथ को बचाने के लिए जिस ऊर्जा से, जिस गति से भागती है, पड़ोसी के बच्चे के लिए वो वापस आके शांत बैठ जाती है। और यदि उसे कोई कह दे कि तो बच्चे के गिरने की बात थी, पड़ोस के मोहल्ले का कोई बच्चा था, तो वो फिर उस बात को अपनी सहेली को और बताएगी थोड़ी देर बाद कि ऐसा ऐसा कुछ सुना था। और यहीं पर हमारी मनीषा ने भारती चिंतन ने स्व का जो डिफाइन किया है, उस स्व में पहली बात आती है व्यष्टि। वह व्यष्टि अपने आप तक खड़ा रख करके अपने आप को सोचता है और उसका स्वयं से अतिरिक्त कहीं कोई नाता नहीं रहता। खुद का काम होना चाहिए, खुद को भूख मिटनी चाहिए, खुद को आराम मिलना चाहिए, पर जब वो खुद से, स्वयं से हट करके थोड़ा आगे बढ़ता है, परिवार तक जाता है, तो परिवार का सुख स्वयं का सुख बन जाता है। वो परिवार का सुख उसका स्वयं का सुख बन जाता है, तब पता लगता है कि सवेरे से शाम तक कारखाने में मजदूरी करके, सड़क पर पत्थर डालकर, एक मजदूर जब पैसा कमाकर घर आता है और अपने बच्चे के लिए खिलौना लाता है, चाहे उसकी एक रोटी कम खाता है और उसको खुशी मिलती है, वह खुशी उसके स्व का विस्तार बतलाती है। उसका स्व का विस्तार स्वयं से हटकर के परिवार तक गया। और भारती मनीषा ने तो इसको बहुत आगे तक देखा है। जिस शिव बाबा की बात करने के लिए, जिसके स्मरण करते हुए हम यहां बैठे हैं, तो हमारे यहां तो कहा गया है कि हम व्यष्टि से समष्टि की चिंता करें, और व्यष्टि और समष्टि के अंदर एकाकार हो जाएं तो व्यक्ति नेतृत्व के गुण प्राप्त कर लेता है, वह समूरे समाज को अपना आप को समझता है। पर व्यष्टि और समष्टि तक ही भारती मनीषा रुकती नहीं है, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से सृष्टि तक की यात्रा करती है। व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि, इसके अंदर भेद नहीं होता। एक स्पिरल देखा आपने, वर्तुलाकार, सेंटर पे व्यक्ति खड़ा है और धीरे 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 इस प्रकार से एक स्प्रिंग जो जैसे चलती है, वह वर्तुलाकार जब उसका कनेक्शन बढ़ता है तो लास्ट पॉइंट से लगा करके फर्स्ट पॉइंट तक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यह स्पिरल रिलेशनशिप कहलाती है, सर्कुलर रिलेशन नहीं है। केंद्र में मैं हूं, मेरा परिवार दूसरा उसका सर्किल है और उन दोनों के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यह कंटिन्यूटी, क्योंकि दीदी गणित की हैं और कंटिन्यूस फंक्शन अच्छी तरह से जानती हैं, तो कंटिन्यूटी बनते 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 जब व्यष्टि से सृष्टि, सृष्टि सृष्टि से व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि तक की यात्रा पूरी होती है, तब भगवान शिव का साक्षात्कार होता है और व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि बनता है, शिवो हम बनता है। कल हमने जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी और दादा लेखराज जी ने यह कार्य प्रारंभ किया और बताया कि किस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर की तरह हम सब अपने आप में एक संपूर्ण आत्मा है। उस परमात्मा कि अंश के रूप में हम संपूर्ण आत्मा है, वह संपूर्ण आत्मा जब अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम इस प्रकार का स्वरूप लेने का प्रारंभ कर दे, तब उसके जीवन का उद्देश्य, उसके बारे में भी हमारे यहां पर चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, केवल संकेत रूप में आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं, क्योंकि घड़ी पर मेरी निगाह पूरी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें जीवन में जीने के लिए व्यक्ति, हम सभी अर्थ और काम के प्रपंच में फंसे हुए रहते हैं, पर आवश्यकता तो इस बात की है, धर्म और मोक्ष की सीमा में, उसकी गार्जियनशिप के अंदर हम अर्थ और काम की चिंता करें तो निश्चित रूप से हम अपने स्वयं को साक्षात्कार कर पाएंगे, हम अपने स्वयं को जान पाएंगे, और स्वयं को जानने के बाद में जब हमारा स्व का विस्तार होगा तो वह स्व का विस्तार किस तरह का होगा, मुझे शांति निकेतन के बाहर लिखी हुई एक पंक्ति याद आ जाती है। वहां लिखा है, शांति निकेतन हम सब जानते हैं, विश्व भवित्यकम नीडम, सारा संसार एक घर बने, एक घोंसला बने, विश्व भवित्यकम नीडम, यह कल्पना भारतीय मनीषा की कल्पना है, और सारे संसार को एक घर बनाए, ऐसी कल्पना यदि अगर भारतीय मनीषा दे सकती है तो सारे संसार को एक घर है, इस प्रकार की सत्य सृष्टि में उन्होंने परिवर्तित भी किया है, जैसे दादा लेखराज जी ने किया, यह उनके स्व का विस्तार था। किसी भी समाज के व्यक्ति की पीड़ा जब उनकी स्वयं की पीड़ा बनी और उसका हल निकालने के लिए उन्होंने एक विधि हमें दी, एक रास्ता हमें दिया, तो उस रास्ते के द्वारा हम अपनी प्रगति भी कर सकते हैं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। वैसे वो राजयोग का जो मार्ग हमें बतलाया, वह राजयोग का मार्ग, चाहे वो अष्टांग योग भी कहता हो, चाहे गीता कहती हो, कुल मिलाकर के संसार के अंदर रहते हुए संसार से अलिप्त भी रहना, वह केवल राजयोग के द्वारा संभव है। चाहे हम अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि और समाधि तक भी पहुंच जाएं, पर समाधि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति, यदि वह राजयोग की तरह से उन सब चीजों को स्वीकार करके संसार में कमलवत रहते हुए, जैसा कल भी बताया था, कमलवत रहते हुए कीचड़ का अपने पर प्रभाव न पड़े और कीचड़ से ही पोषण लेता रहे, उस प्रकार का जीवन वो जीने का अभ्यास न करे, तब तक उसके स्व का विस्तार नहीं हो सकता, और जब तक स्व का विस्तार नहीं होता तो दूसरे की पीड़ा हम कैसे जानेंगे। हमारे यहां तो गांधी जी ने अच्छा भजन गाया है, वैष्णव जन तो तेने कही है जो पीड़ पराई जाने रे, जब दूसरे की पीड़ा हम नहीं जानेंगे तो दूसरे को हम कैसे ठीक मार्ग बताएंगे और कैसे उस सामने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतेंगे, और यदि उसका विश्वास नहीं जीता तो हम उसका नेतृत्व कैसे प्रदान करेंगे। और विश्वास जीतने के लिए तभी संभव होगा जबकि मैं सामने वाले के साथ एकाकार हो जाऊं, और एकाकार होने का मार्ग यही है कि मैं अपने स्व का विस्तार करूं। विवेकानंद ने भी यही कहा है, और एक बार नहीं अलग अलग जगह कहा है कि व्यक्ति का निर्माण उसके स्व का विस्तार होने के साथ साथ संभव है। पर ये व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ कहां से होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे टीएस इलियट की पंक्तियां याद आती है, टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट बोथ आर पर प्रेजेंट एंड टाइम फ्यूचर, एंड टाइम फ्यूचर इज कंटेंड इन टाइम पास्ट। सीधा अर्थ है कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो हमारे पास्ट और वर्तमान पर निर्भर करेगा, पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान यह क्षण और ये निकलेगा, क्षण निकलते जा रहे हैं, इस क्षण को हम हाथ में लेकर के अपने भविष्य को सुधारने का, संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें पास्ट तो हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा। तो इस क्षण से हम यह सोचें कि हम किस प्रकार से समाज के साथ एकाकार हों, हम किस प्रकार से दूसरों के साथ हमारे संबंध इस प्रकार से बने कि दूसरों का विश्वास जीतें, दूसरों का प्यार जीतें, दूसरों का स्नेह जीतें, और उन्हें दूसरा कहना भी शायद अतिशयोक्ति होगी, गलत होगा, उन्हें हम अपना समझें। जब तक उन्हें हम अपना समझ करके, स्वयं समझ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और सेल्फ रियलाइजेशन में भारती मनीषा ने तो एक बात और कही, यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम। ये जो पिंड है यही ब्रह्मांड है, कोई भी पिंड ले लो, यह पिंड है यही ब्रह्मांड है। और इसका प्रमाण तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन गोड पार्टिकल को खोज करके दिया है, और गोड पार्टिकल हर जगह मौजूद है। अल्टीमेट पार्टिकल जो आज तक कोई विज्ञान ढूंढ पाया है वह हिग्स बोसोन गोड पार्टिकल है। और उसके बारे में भी यही कहा है कि आज तक तो यही जाना, बाकी नेति नेति, शायद यह न हो कुछ और भी आगे निकले। उसी नेति नेति के क्रम के अंदर हम सदैव चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और सकारात्मकता जीवन के अंदर रख करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस मूल्य शिक्षा हम अध्यात्म में है। अध्यात्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अध्यात्म को आज तक किसी ने परिभाषित नहीं किया है। अध्यात्म केवल अनुभव की बात है, यह गूंगे का गुड़ है, यह अंधे की खीर है। अब ये कैसे अध्यात्म को परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म को हर विद्वान ने अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप से सामने रखा है। पर अध्यात्म है इस बात को सभी जानते हैं। अध्यात्म को नकारा नहीं जा सकता। और मूल्यों की जो बात है, तो मैं नहीं सोचता हूं कि जिस संस्कृति ने एक छोटा सा, हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं जैसा श्लोक दिया हो, मात्र व्रत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मव्रत सर्वभूतेशु यह पश्यति स पंडिता, उस संस्कृति के अंदर मूल्यों की बात जन्म से नहीं सिखाई जाती है। जन्म से मूल्यों की बात सिखाने की परंपरा भारतीय पनिषा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में है। यदि नहीं सिखाते हैं तो हमारी गलती है। और वह मूल्य परक शिक्षा जब घर से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ती है, तो हमें गांधी मिलते हैं, हमें दादा लेखराज मिलते हैं, हमें सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं, हमें भगत सिंह मिलते हैं, हमें चंद्रशेखर आजाद मिलते हैं। और जिनके घरों में, जिनके परिवार में इस प्रकार के संस्कार नहीं मिले, वहां पर हमें कुछ और नजर आते हैं, जिनसे हम सब पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी दीदी ने अपनी बात पूरी करते करते बात कहा था कि हमें चलना है, तो मुझे भी एक कविता की पंक्तियां याद आ गई। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटो ही, पथ पर संभल संभल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आश निराशा, इससे हमें कहां प्रत्याशा, बीहड़ता में राह बनाता राही, संभल संभल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को, जैसा बताया था कि नट की भूमिका है उसकी, उसको बहुत बैलेंस बना करके चलना है, अच्छे और बुरे के अंदर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के, एक कदम भी गलत पड़ गया तो उसका स्खलन निश्चित है। और मनुष्य के बारे में कहा गया है कि वह कभी भी उसका स्खलन हो सकता है। हमने अच्छे अच्छे मनुष्यों को देखा है, ऋषियों को देखा है जिनका स्खलन किसी भी क्षण हो गया। तो हम सभी तो हाड़मांस के मानव पिंड हैं, तो हमें हमेशा संभल संभल करके चलना है। और संभल संभल के चलने के लिए हमारे पास सत्संग आवश्यक है। वह सत्संग आश्रम से मिल सकता है, हमें मिल रहा है, हमें जो यहां से प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के माध्यम से मुझे विश्वास है कि हम उस जो नट रस्सी पर चलता है और हाथ में एक बांस लेकर के चलता है, जिससे कि वो बैलेंस बनाता रहता है, तो ये प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उस बांस की तरह हमारे हाथ में रहना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए, जो हमारा बैलेंस बनाने में, हमें ठीक कदम उठाने के अंदर हमें सहायता प्रदान करे। और वह सहायता प्रदान करते हुए मैं पुनः घड़ी की ओर देखता हुआ अपनी बात पूरा करना चाहूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आज सवेरे हमारे कुलपति महोदय ने पंक्तियां सुनाई थी, मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पंक्तियां सुनाता हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल द बोथ। एक घने जंगल के अंदर एक रास्ता दोराहे में विभक्त हो गया, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। कविता में आगे कहते हैं कि मैंने एक रास्ता चुन लिया यह सोचकर कि लौट करके दूसरे रास्ते पर कभी आगे चला जाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि जो रास्ता मैंने चुना है वह भी आगे दोराहे में विभक्त होगा आगे। तो यह ऐसा क्षण है जब हम किसी दोराहे पर खड़े हैं, हमारा समाज के हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे परिचित दोराहे पर खड़े हैं कि हम किस दिशा में जाएं, तो हम उन्हें प्रेरणा दें, हम उन्हें मार्गदर्शन दें और हम उनका मन जीतें। उनका मन जीतने के लिए हम उनका विश्वास किस प्रकार जीत सकते हैं? अपने सद्भाव से, अपने सदाचरण से, अपने सदव्यवहार से, अपने पवित्रता से, अपनी शालीनता से और अपनी ट्रांसपेरेंसी से। उसके आधार पर हम उनका जीत करके उन्हें सदमार्ग बतलाएं कि इस पे आगे चलो तो तुम्हें जीवन में पछतावा नहीं होगा कि मैं गलत मार्ग पर चला था। अब तक तो जो चलना था चल गए, टाइम पास्ट इज टाइम पास्ट, बट वी शुड इम्प्रूव टाइम प्रेजेंट। मैं पुनः अपनी ही मनीषा के उस कल्याण मंत्र के साथ अपनी बात पूरी करूंगा जिसने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चन दुख भाग भवेत। और वह रास्ता सच्चाई का रास्ता है, उसी में सब सुखी रहेंगे, सब निरोग रहेंगे, सब अच्छा देखेंगे और दुनिया में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। वह जिस स्वर्ग की बात, जिस सतयुग की बात हम कर रहे हैं, वह सतयुग इस धरा पर हम अपनी आंखों से, अपनी ही देह से देखेंगे यदि हमने संकल्प लेकर के ठीक काम के लिए अपना योगदान दिया और अपने स्व का विस्तार किया। आप सबने मुझे अवसर दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता प्रोफेसर पीके दशोरा जी का। आपने सर्व को, संपूर्ण विश्व को सुख शांति की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार हम सबके बीच में व्यक्त किए। तो आज हमने ये समझने की पहल की कि आखिर हम अपने को बीइंग समझ के, जो दीदी ने हमें गहराई समझाई, और अपने आत्मिक सत्य स्वरूप, जो आत्मा के सात गुण हैं, उनको अपने जीवन में, अपने अनुभव में ला करके मेडिटेशन के द्वारा उसका स्वरूप बन के कैसे हम अपने जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। ईश्वरीय सौगात की देंगे, साथ में ईश्वरीय प्रसाद के द्वारा उनका सम्मान करें।